नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके अपने स्टूडियो में। तो आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, नाम है डॉक्टर विमला मैम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। मैम, आपका मोस्ट वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में।
थैंक यू अदनान।
थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है हमारी ज़िंदगी में, हम बहुत फेस करते हैं और बहुत सारे डाउट्स हैं उसको लेके। कोई बात नहीं, मैम इतनी मिस्ट्री नहीं बनाने वाला हूँ। तो आपको फौरन बता देता हूँ कि उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मैम, और मैम से हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं डिप्रेशन के ऊपर। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि डिप्रेशन है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल अदनान। डिप्रेशन, जैसा कि आज के वर्तमान युग में भौतिक परिवेश में जो एक मतलब बिल्कुल बिजी शेड्यूल में जो डिप्रेशन जैसी जो चीज़ है, तो इसके बारे में बिल्कुल मैं बताना चाहूँगी। और जैसा कि मैं मनोविज्ञान की भी प्रोफेसर हूँ, तो फिर और ज़्यादा इसको क्लियर करना चाहूँगी। तो इसमें क्या है कि ये देखा जाए तो ये सभी बीमारियों की या मतलब एक सामान्य और मुख्य या प्रमुख जड़ है। मतलब जितनी भी बीमारियाँ हैं मोस्टली जो है डिप्रेशन की वजह से ही हो रही हैं, तो ये है। एंड मतलब इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो मनोदशा है उसमें जो है क्या कहते हैं, उदासी उत्पन्न हो जाती है। मतलब किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो जाता, इंटरेस्ट नहीं रह जाता इंसान का। तो ये है। और एक ये क्लिनिकल सिंड्रोम भी है, और इसमें 5 तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसा कि इमोशनल में देखा जाए तो जो है क्या कहते हैं, वो बिल्कुल पूरी तरह से सैडनेस से भरा रहता है, चिंता, उसमें अपराध की भावना बहुत रहती है, गुस्सा तो बिल्कुल पीक पर होता है, कभी कभी उसका मूड पूरी तरह से स्विंग्स हो जाते हैं, और इरिटेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ कहने को। तो ये तो पहला जो हमारा लक्षण हो गया वो हो गया इमोशनल, कि वो अपने संवेग पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पर कौन सा संवेग हमें एक्सप्रेस करना है। देन दूसरी बात है मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल में जो है क्या कहते हैं, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेकर के बिल्कुल खुश नहीं होता है कि इससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, इसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। और थॉट्स में भी परिवर्तन होते हैं, उसके थॉट्स में परिवर्तन मतलब उसके जो विचार होते हैं वो खुद को ही क्रिटिसाइज़ करता रहता है, मैं ऐसा हूँ, मतलब कुछ भी उसके अंदर अच्छा नहीं उसको लगता है। उसको लगता है कि मतलब बिल्कुल खुद को क्रिटिसाइज़ करते जाओ, मतलब जितनी अपनी खुद की मैं आलोचना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये जो है क्या कहते हैं, ये भी उसमें ये लक्षण रहते हैं विषाद में या डिप्रेशन में। इसके अलावा उसके मेमोरी जो होती है बहुत ही टूटी फूटी टाइप की, मतलब क्या उसने कल किया था, क्या अभी करना है, एंड इवन कल फ्यूचर में वो क्या करेगा, तो ये होता है। एंड इसके अलावा कंफ्यूज रहता है, मतलब ऑल टाइम कंफ्यूजन। और मोस्टली जो उसके अंदर जो होता है ना, वो थॉट ऑफ डेथ, मतलब मर जाऊँ, ऐसा कर लूँ, मोस्टली जो सुसाइड का आजकल कॉन्सेप्ट आ गया है,
सुसाइडियल थॉट।
हाँ, सुसाइडियल थॉट मोस्टली जो है वो, मतलब मैं मर जाऊँगा, मैं ऐसा कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें होती हैं। फिजिकल में मोस्टली वो थका थका सा, मतलब कितना भी एक्टिव है बट वो मोस्टली वो थका थका सा महसूस करता है।
ओके।
एंड एनर्जी भी लॉस रहती है, स्लीपिंग या तो बहुत ज़्यादा वो सोता है या तो बहुत कम, तो भी क्या है कि वो डिप्रेशन में है। इसके अलावा या तो अगर हमारा वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो भी जो है क्या कहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन का लक्षण है। और ड्रग ले रहा है, किसी भी तरह का मादक द्रव्य का सेवन कर रहा है जिसका टू मच, मतलब तो भी वो डिप्रेशन में है। इसके अलावा बिहेवियर में अगर बिहेवियरल अगर देखा जाए तो क्या होता है कि वो लोगों से कटा कटा सा महसूस करता है, मतलब हमें इनसे नहीं मिलना है, मैं नहीं मिलूँगा या नहीं मिलूँगी, तो ये चीज़ें होती हैं। और इवन जो है क्या कहते हैं, मतलब अपनी जिम्मेदारियों से इंसान भागता है। जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या है कि जो है क्या कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भी भागने लगता है। और जो उसका पर्सनल अपीयरेंस है, मतलब एक देखा जाए तो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है जो है वो क्या है, अपने फिजिकल अपीयरेंस, मतलब अपने आप को कैसे रखना है, इन पर भी ध्यान देता है। लेकिन ये जो है जब इतनी सारी चीज़ें की इमोशन भी इमोशनली भी वो बैलेंस नहीं है, अपने थॉट्स पर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, फिजिकल भी नहीं ध्यान दे पा रहा है, एंड बिहेवियर तो ऑटोमेटिक बिगड़ना ही बिगड़ना है। लेकिन हाँ, यहाँ पर अंत में ये कहूँगी कि केवल मतलब सिम्टम्स ये दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डिप्रेशन है। मोस्टली ये सिम्टम्स हमें कम से कम 4 हफ्ते तक अगर किसी व्यक्ति में मतलब दिखने लगे तो डिप्रेशन है। तो ये चीजें हैं।
मेरा आपसे मैम अगला सवाल ये है कि जैसे आपने जो लक्षण बताए ये बड़े कॉमन से लक्षण है और ये हम लोग सभी लोगों के साथ होते हैं, तो हम ये कैसे डिफरेंशिएट करें कि हाँ ये डिप्रेशन ही है या जैसे कि ये नॉर्मल बिहेवियर का भी एक हिस्सा है?
हाँ, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अदनान जी आपने। मेनली ये होता है कि जैसा कि मैंने अभी बोला ना कि जैसे कि मोस्टली अभी कुछ लोग जो हमें सुन रहे होंगे, हाँ वो तो यही कह रहे होंगे, हाँ मेरे अंदर तो ये भी लक्षण है,
Correct.
मेरे साथ में तो ये भी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ में मुझे ये तो, अरे मुझे जी. लगता है डिप्रेशन। नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें थमना है, यहाँ हमें अपने आप को एक पॉज देना है, एक ब्रेक देना है। ये नहीं मानना है कि डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन मतलब मैंने एक लाइन जोड़ी ना कि जो है अगर ये सिम्टम्स जो मैंने बोले हैं इमोशनल फिजिकल एंड इमोशनल फिजिकल एंड मोटिवेशनल एंड बिहेवियरल, ये जो 5 लक्षण 5 जो सिम्टम्स हमने बोले, इनमें जो जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर इनमें से ये सभी लक्षण कंटिन्यूसली मतलब लगातार अगर प्रॉपर 1 मंथ तक किसी के अंदर है, तब हम कह सकते हैं कि फला व्यक्ति को डिप्रेशन है।
यानी ये कह सकते हैं कि जो आपने लक्षण बताए ये नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, लेकिन
हाँ।
अगर ये कंटिन्यूटी में रहते हैं और ये लॉन्ग टर्म में भी हमको देखने को मिलते हैं कि इंसान में चेंजेस नहीं आ, लगातार वो पैनिक हो जाता है, गुस्सा रहता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं और खुद की इमेज वो नहीं बना पाते हैं, कहीं ना कहीं उसको खुद को लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा,
बिल्कुल
इस तरह के थॉट्स आना। ओके, थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि ये बहुत ही मिथ था कि लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर हल्की सी ड्रॉ लाइन है कहाँ पे, डिप्रेशन क्या है और नॉर्मल बिहेवियर क्या है।
बिल्कुल,
तो ये बताइए अगर मान लीजिए किसी भी हमारे लिसनर में कोई ऐसा हो या उसकी फैमिली में कोई ऐसा हो और उसको इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं और 1 महीने से ज्यादा से नजर आ रहे हैं, तो अभी उसकी फैमिली के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है या वो खुद कैसे इससे कोप अप करेगा?
ओके, जो है क्या कहते हैं इंडिया में मोस्टली जो हमारा ये जो मतलब देखा जाए जो सबसे ज़्यादा कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो मानसिक समस्या हैं, जैसा कि लास्ट हम लोगों का जब हमें बुलाया गया था स्टूडियो में तो उसमें भी एक कंचन मैम थी, तो उन्होंने भी ये बोला था कि मतलब मोस्टली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें फिजिकल अगर बीमारी होती है लाइक पैर टूट गया, पेट में दर्द है या एनी अदर फिजिकल शारीरिक कोई भी समस्या होती है तो हम तुरंत डॉक्टर पास, हाँ हमें डॉक्टर पास जाना चाहिए, बट लेकिन मानसिक समस्याओं में क्या होता है लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनकी फैमिली से या जो भी इस प्रॉब्लम से, इस डिप्रेशन से, जो भी इन सिम्टम्स से गुजर रहा है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें, उसको स्वीकारें कि हाँ ये भी एक विकृति या बीमारी है, और इसके लिए वो जा कर के मोस्टली क्या है कि पहली बात तो वो एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद में जो है ये मतलब मोस्टली कोशिश करें कि अगर वो नॉर्मली अपने आप से खुद में ही कंट्रोल हो जा रही है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने से, तो तब तो ठीक है, नहीं तो वो काउंसलर, साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेकर के वो इस प्रॉब्लम को से निजात पा सकते हैं।
तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसा अभी आपने बताया कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट हमारे समाज में देखा भी जाता है कि जिनको थोड़ी सी भी मेंटल प्रॉब्लम होती है तो उनका मजाक बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस नहीं होने की वजह शायद ये है कि उस तरह से उसको देखा नहीं जाता जैसे आपने कहा ना, तो जो बाकी लोग भी हैं जो जिनका नॉर्मल बिहेवियर है वो भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ये मानते हैं कहीं ना कहीं उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये मेंटल है, ठीक है, तो उसको उसी बीमारी की तरह देखा जाए जैसे आपने बताया कि फिजिकली बीमारी होती है ना, उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो इस तरह इसके भी डॉक्टर होते हैं।
जी बिल्कुल, उसको भी क्योंकि प्रॉपर ये भी और इसको भी ठीक किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है कि हमें मानसिक बीमारी हो गई है तो इवन जो क्या कहते हैं कि हम नहीं उससे मतलब कोप अप कर सकते या उसे हम नहीं सुधार सकते, वो उसे हम नहीं ठीक कर सकते। मोस्टली क्या है कि अगर फिजिकल बीमारियों का इलाज है तो कहीं तो मानसिक बीमारियों का भी इलाज अब संभव हो गया, कोशिश करनी है और मतलब हमें समाज को यही कहना है, संदेश देना है कि एटलीस्ट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करें कि हाँ ये बीमारी है, इसे ठीक किया जा सकता है, और जब एक्सेप्ट करेंगे किसी भी चीज़ को, हम अच्छी हो या बुरी हो, यदि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो काफ़ी कुछ उसमें सुधार हो जाता है। मतलब हमें क्या है, सॉल्यूशन फोकस्ड बनना है, प्रॉब्लम फोकस्ड नहीं बनना है।
ओके, तो मैम अभी आपने एक टर्म यूज़ किया कि हमको सॉल्यूशन फोकस बनना है, प्रॉब्लम फोकस नहीं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सभी के पास है, लेकिन उसका हल क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, उस पर हमें देखना है। मैम अभी जैसे कि मैंने इससे पहले सवाल किया था, मैं उसका जवाब चाहूंगा कि अगर किसी में ये चीज़ आइडेंटिफाई होती है तो उसको कोप अप करने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती
है। उसे कोप अप करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि कोप अप करने के लिए कि वो पहली बात तो उस समस्या को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद में मतलब मोस्टली क्या होता है, हम अपने शेड्यूल में इतने बिजी होते हैं ना कि हम कभी खुद पर ध्यान दे ही नहीं पाते हैं। तो अपने लिए समय निकालें और उसमें क्या है, डीप ब्रीदिंग करें, मतलब गहरी सांस लें और ये सोचें कि आखिर प्रॉब्लम हो कहाँ रही है। तो डीप ब्रीदिंग पहली बात। नंबर टू, जो भी समस्याएं आप अपने डेली लाइफ में, नंबर टू यही कहना चाहूँगी कि डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसे लिखें और उसके बाद में ये सोचें कि लिखने से क्या होता है ना कि हमारी जितनी भी समस्याएं होती मोस्टली वो निकल के आती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर इतना भूचाल सा भरा होता है कि मतलब भूकंप, ज्वालामुखी और चक्रवात जैसा चल रहा होता है। तो उसे एक्सेप्ट करें और लिखें और लिख करके मतलब देखें कि समस्या कहाँ हो रही। तो लिखने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व होती हैं। देन नंबर थ्री अगर मैं कहना चाहूँगी तो सेल्फ टॉक, मतलब खुद से भी कभी एक अपने लिए 5 मिनट 10 मिनट, मतलब दिन का इतना बिजी शेड्यूल है कि अपने काम में इतने बिजी होते जा रहे हैं कि हम मतलब खुद को समय नहीं दे रहे। तो उसमें क्या है, सेल्फ टॉक करें, खुद से बातचीत करें, खुद से मतलब कि क्या, हाँ अच्छा ये मैंने अच्छा किया, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। तो सेल्फ टॉक के थ्रू भी जो है इस प्रॉब्लम से निपटा जा सकता है। इसके अलावा खुद को मोटिवेट रखें, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कॉमिक्स, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें और खुद को मोटिवेट रखें। मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट रखें कि क्या होता है कि जैसे कि हम आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को हम सब्जी लेने जाते हैं ना, तो हमको क्या है, सड़ा फूल या सड़ी गोभी मतलब नहीं समझने, हम हमेशा ताज़ा। तो अपने आप को जब हम ताज़ा रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक जो है हम खुद में मोटिवेट रहेंगे और जो है मतलब समस्याओं से दूर रहेंगे। इस तरह मतलब क्या है, डिप्रेशन जैसी समस्या हमारे अंदर नहीं आएगी। म्यूज़िक सुने, 89.6 FM है ही, तो उस पर म्यूज़िक सुने, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आते ही हैं तो वो सुने, ये सारी चीज़ें करें। और इसके अलावा जो है स्वयं को बिज़ी रखें। मोस्टली क्या होता है कि जब हम बिज़ी रखते हैं खुद को तो कोई वो ऐसा थॉट आएगा ही नहीं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों में बुक्स पढ़ें, रीडिंग करें, किसी अपने से बात करें, कभी कोई हालचाल ले लें। तो ये सारी चीज़ें करके भी हम अगर बिज़ी रखते हैं तो भी डिप्रेशन से दूर रहा जा सकता है। इसके अलावा सुबह शाम टहलें। टहलने से क्या होता है ना, आज के बिज़ी शेड्यूल में हम लोग ऐसे हो गए कि हमने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा है। मतलब अगर गर्मी का मौसम है तो हम एसी में अपने आप को पैक करके रख रहे हैं या फिर जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है। एंड इवन जो है अगर ठंडियों का मौसम है तो ब्लोवर एंड व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि टहलें, और टहलने से क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो हैप्पी हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है। तो ये करने से भी जो है इन मनो जो भी मानसिक समस्याएं हैं या डिप्रेशन जैसी जो समस्या है उससे दूर रहा जा सकता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट लें। क्या होता है कि जैसे कहते नहीं है कि अगर पेट भरा है तो सब कुछ मतलब पूरी तरह से, कभी कभी व्रत रखिए तो कितनी इरिटेशन होती है, मतलब मोस्टली जो देखने को मिलता है। तो क्या है कि अगर हेल्दी डाइट ली है, प्रॉपर डाइट लें, और इसके अलावा एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें, और इवन जैसा कि इससे पहले भी कहा है कि हमें जो है क्या कहते हैं मतलब क्या है, प्रॉब्लम फोकस्ड ना बन के हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। तो ये चीज़ें हैं। और उम्मीदें लोगों से कम करें। जब हम उम्मीदें या एक्सपेक्टेशंस लोगों से कम करते हैं तो हमारी जो ऑटोमेटिक जो समस्याएं हैं ना वो कम हो जाती हैं। हम ये सोचते हैं कि फला व्यक्ति हमारे लिए करेगा, लेकिन क्यों करेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन ना रखें तो ऑटोमेटिक ही डिप्रेशन जैसी समस्या से मतलब कोसों दूर रह सकते हैं। और अंत में अगर इन सभी चीज़ों को करने के बाद भी अगर नहीं सॉल्यूशन मिलता है तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी काउंसलर या साइकेट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें और उनसे इन प्रॉब्लम से, क्योंकि वो जब आपकी काउंसलिंग या फिर दवाइयों के थ्रू डिप्रेशन जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं।
सो बिल्कुल, अभी आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए हैं, हमारे श्रोताओं को समझ में आया होगा कि अगर किसी में भी ये लक्षण नज़र आते हैं तो वो बहुत से तरह के उपाय कर सकता है। जैसे आपने जो कुछ भी बताया उसमें बहुत सारी बातों में ये था कि सेल्फ सेंट्रिक होना, यानी अपने लिए वक्त निकालना है, अपने को बिज़ी करना है और अपने लिए पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव सोचने के लिए पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है, और करने से पहले जो बैरियर आता है वो होती है हमारी हैबिट, और हैबिट जब तक हम चेंज करते नहीं है तब तक हैबिट चेंज होती नहीं है। तो मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये बहुत समझ में आएगा, और थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा जो प्रॉब्लम अभी चल रही है हमारे समाज में, जो मोस्टली लोग इसको फेस कर रहे हैं, उस पर आपने बात किया, और ये भी बताया कि अगर इन सारी चीज़ों को करने से नहीं होता सॉल्यूशन तो फिर मनोवैज्ञानिक इसके लिए हैं, इसके डॉक्टर होते हैं। जैसे हमको फिजिकली कोई बीमारी होती है उसके लिए फिजिशियन सर्जन होते हैं, उसी तरह इसके लिए भी डॉक्टर्स होते हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। साथ ही अगर मैं फैमिली की बात करूँ तो जो कुछ भी बताया मैम ने, फैमिली को उस बंदे को, उस बंदी को कराने में पूरा का पूरा सपोर्ट देना है, अपने बेटा बेटी या भाई बहन या माँ बाप कोई भी अगर इस तरह से अब जूझ रहे हैं डिप्रेशन से, तो उसी तरह से उनको काउंसलिंग भी करना और पूरी चीज़ें उनके ऊपर कराना है। और अगला सवाल मेरा मैम ये है, जो मोस्टली देखा जाता है कि लोग टर्म यूज़ करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस, इसमें कुछ फ़र्क है, तो प्लीज़ कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा बताइए तीनों के बारे में।
हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन में क्या है कि ना, डिप्रेशन जैसे कि ब्रॉड टर्म हो गया, और डिप्रेशन के अंदर ही एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया। तो इवन क्या है कि एंजाइटी मतलब मोस्टली जो एंजाइटी जो है वो मतलब क्या है कि एक चिंता है, और चिंता जो है, हाँ एंजाइटी जो है वो एक चिंता है, और चिंता जैसे कि एंजाइटी को कहते हैं, तो मतलब डिप्रेशन के अंदर ये सिम्टम्स इंक्लूड होते हैं। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसे एंजाइटी और स्ट्रेस होगा। हाँ तो ये चीज़ें हैं,
यानी आपने बताया कि डिप्रेशन के अंदर का ही एक ये पार्ट है जिसमें आपका स्ट्रेस और एंजाइटी आता है, तो लोग शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में भी इस चीज़ को यूज़ करते हैं, तो ये जाना बहुत ज़रूरी था।
बिल्कुल।
अच्छा मैम, जानने से पहले, इस शो के ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक अंतिम सवाल करना चाहूँगा कि आप अभी यहाँ पर बैठी हैं स्टूडियो में, तो आप अपने आसपास बहुत तरह की इस तरह की समस्याओं को आप खुद भी देख रही हैं, तो आपका क्या संदेश है लोगों को, जो भी श्रोता इसको सुन रहे हैं, गोंडा में ही नहीं सुन रहे हैं, ऐप के थ्रू वर्ल्ड वाइड भी सुन रहे हैं लोग, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
मैसेज है कि आप सभी को कि आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव करें, स्वयं को इतना बिजी रखें कि कोई भी नेगेटिव थॉट आपके अंदर मन मस्तिष्क में ना आने पाए, और जिससे आप डिप्रेशन जैसी स्थिति से दूर रहें और खुश रहें, और 89.6 FM सुनते रहें
और सुनाते रहें अपने घर वालों को
एंड इसी के साथ में थैंक यू और नमस्कार।
थैंक यू सो मच मैम, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल रहा, क्योंकि ये जो समस्या है बहुत ज़्यादा आम है, इवन मेरे खुद ही आज काफ़ी चीज़ें क्लियर रही, बहुत सारे मिथ है इस चीज़ को लेके, और ये भी मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आज इतने से छोटे से टॉपिक में इसको समेटा नहीं जा सकता है, तो हम इसी वादे के साथ मैं आपको भेजते हैं कि वापस फिर से लेकर आएंगे और बहुत सारी इस पर भी और डिटेल में बातें करेंगे।
बिल्कुल
बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये बातें होनी भी ज़रूरी है, और जो रेडियो का एक पर्पस होता है लोगों के बीच में एक अच्छी सी वेव स्प्रेड करना,
बिल्कुल,
और कहीं ना कहीं मतलब जहाँ जिस एरिया में एस्टैब्लिश है वहाँ के लोगों के लिए भलाई होना,
बिल्कुल,
तो उसमें बखूबी आप सभी एक्सपर्ट्स हमारे ज्ञानस्थली के जो आउटसोर्स से आते हैं सभी लोग बहुत बखूबी इसमें अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं।
बिल्कुल,
तो अपने गोंडा वासियों से हम यही कहेंगे कि आप भी सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपने लाइफ को मस्त बनाते रहिए। नाउ यू आर लिसनिंग ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।